प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
हमारे आज के श्रोता साथी देवरी भाटापारा के श्रोता हैं। इनसे बातचीत कर रही हैं मीनू सिंह और इनका नाम है गन्नूलाल रजक।
सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री गन्नूलाल रजक जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में गन्नूलाल जी आपका।
जी हाँ।
सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे।
मेरा नाम गन्नूलाल रजक है। मैं ग्राम देवरी भाटापारा, जिला बुलागा उधर भाटापारा में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे पत्नी है, 3 पुत्र हैं, 2 बहू हैं, 1 नातिन है। इस प्रकार से हम कुल 8 लोग रहते हैं एक ही परिवार में।
अच्छा, जॉइंट फैमिली है आपकी।
जी जी।
आपका व्यवसाय क्या है गन्नूलाल जी?
मैं वैसे कृषि कार्य करता हूँ, खेती किसानी का काम, और खेती किसानी का काम को करते हुए रामायण मंडली है, महाभारत पंडवानी गायन भी करते हैं, और साथ में कबीर भजन मंडली के रूप में भी गायन और व्याख्या करते हैं, और इस तरह से मेरा जो व्यवसाय इसी में चलता है।
जी, तो कृषि के साथ साथ, मिट्टी के साथ जुड़े होने के साथ साथ आप संगीत से भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, ये कहना चाहते हैं आप? संगीत की हर विधा से, चाहे वो पांडवानी के रूप में लोकगीत हो, या सुगम संगीत हो रामचरितमानस गायन के रूप में, या फिर कबीर के जो गीत हैं या उनकी जो बोल हैं उनको गाने का। तो गन्नूलाल जी, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रोकते हैं और आपके गीत संगीत की बात आगे करेंगे। गन्नू जी, आपने बताया कि आप पांडवानी भी गाते हैं और रामचरितमानस का तो आप बता ही रहे हैं कि मंडली है, तो पांडवानी गाते वक्त आप क्या क्या प्रस्तुत करते हैं?
पांडवानी गायन वक्त करते समय मेरा बड़ा भाई है सहदेव रजक, वो मुख्य गायन का वही करते हैं। मैं उसके संग में रागी की भूमिका निभाता हूँ
जी,
और उसमें हम लोग महाभारत की जो वेदमती शैली है, पांडवानी की 2 शैली है, कपालिक शैली और वेदमती शैली।
जी जी।
तो हम लोग वेदमती शैली में जो वेद सम्मत जो है उनको हम लोगों के बीच में जो पांडवानी का जो प्रसंग है उसको हम प्रस्तुत करते हैं, और इसमें जिस तरह से जो वेद में लिखा हुआ है उसी को हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ये हमारे अलग से कोई हम लोग कल्पना टाइप का ये नहीं है, हमारा वेदमती शैली में ही चलता है।
जी जी। तो ये कपालिक शैली और वेदमती शैली में क्या अंतर होता है?
कपालिक शैली में क्या है, एक जो गायिका रहती है वो अपने तरफ से, या जो गायक रहता है वो अपने तरफ से ये बताते हैं कि भीम है जो गदा लेकर के चला, तो उनके पास जो समूरा रहता है उस समूरे को अपने कंधे में लेकर के कैसे चला, क्या चला, ये करके वो बताते हैं अपना।
अच्छा।
और उसके पास में वो तो गदा जैसा है, तो गदा उसका कितना था, उसका वो वजन नहीं बता पाता, उसका कितना वजन का था, तो उसको हम लोग वेदमती शैली में उनका जो वजन कितना है, क्या लंबाई है, ये सब हमको वेद में जो लिखा है उसको बता के बताना पड़ता है, वो केवल कल्पना से बताते हैं।
अच्छा, वो एक्टिंग करके बताते हैं और आप शब्दों के जरिए पूरा प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं, ये आप बताना चाह रहे हैं?
जी हाँ।
अगर कोई प्रसंग आप हमको सुना सके थोड़ा सा।
तो एक प्रसंग है जो लाखा महल का है।
जी जी।
तो एक समय क्या है, जो वेद व्यास मुनि जी है वो अपने शिष्य है वैशंपायन जी,
जी
उनको वो कथा सुनाते हैं, और सुनाते समय उनको राजा जन्मजय की जो कथा है
जी, जी
उनको
जी।
सुनाते हैं, तो उसमें क्या लाखा महल में ये जो दुर्योधन है
जी,
ये दुर्योधन है क्या है, अब कौरव और पांडव में वो अपने जो कौरव वर्ग का बड़ा भाई रहता है
जी,
और उस मन में पांडवों के प्रति हमेशा छल और कपट रहता है
जी।
तो छल कपट के दृष्टिकोण से इन लोग का जो पांचों भाई का जो रहन सहन है उनको अच्छा नहीं लगता, और अच्छा नहीं लगता तो वो अपने तरफ से ये उपाय करता है कि इन लोगों को किस तरह से नष्ट किया जाए, और किस तरह से इन लोगों को नाश करके मैं जो सर्वस्त्र राज्य छत्र राज्य करो, ऐसा करके वो अपने छल कपट से एक लाखा भवन का निर्माण करते हैं
जी।
और लाखा भवन का निर्माण करके ये पांडव लोगों को उसी में ठहराते हैं, तो पांचों पांडव उनकी माता कुंती ये सब लाखा महल में रहते हैं। तो उस समय पता चल जाता है विदुर जी, जो उनके चाचा रहते हैं उनको, तो विदुर जी को पता चलता है कि लाखा महल का निर्माण हो रहा है, तो जो राजमिस्त्री रहता है उसको वो कुछ मुद्रा देकर के ये कहता है कि उसमें कुछ ऐसा जगह बनाना जिससे लाख महल में अगर आग प्रज्वलित हो जाए तो ये पांडव लोग वो किसी तरह से निकल जाए, तो ऐसा नहीं तो कोई संकेत बना देना चाहिए करके, तो एक खंभा गाड़ देते हैं, और खंभा गाड़ने के बाद में उसको संकेतिक रूप में ये पांचों पांडव लोगों को ना जान पाए दुर्योधन, ऐसा करके उन लोग को जानकारी पहले दे दे रहे थे जो अपना ये युधिष्ठिर है उनको। तो उसके बाद में जो युधिष्ठिर को पता रहता है, तो जब लाखा महल में आग लगता है तो आपके लगते में जब आग लग जाता है तो उसी समय कुछ जो ब्याज वर्ग के स्त्री रहती है अपने बच्चों को लेकर के वहाँ शरण लेकर के आती है, तो उन लोग भी वहीं ठहरे रहते हैं। तो वो भी उसका पांच पुत्र रहते हैं और वो ब्याज की स्त्री भी रहती है। तो ये स्त्री लोग हैं और पांचों पांडव जब लाखा महल जो जलाने का प्रयास जब दुर्योधन करते हैं तो लाखा महल तो जल जाता है, लेकिन वो पांच की जो ब्याज रहती स्त्री रहती है पांचों पांडव को न करके उनके बच्चे लोग जल जाते हैं और उन लोग को ये आभास होता है कि पांचों पांडव जल गए। और उसके बाद में इस तरह से जो लाखा महल का निर्माण हमारा सफल हो गया, ऐसे करके दुर्योधन अपने मन में ये कह रहे थे लेकिन ये असफल हो जाता है।
जी, तो ये पूरी चीज आप गा के सुनाते हैं?
हाँ, इसको हम संगीत में गा करके इसको बताते हैं कैसा है क्या है इसको।
जी, तो उसकी दो लाइनें थोड़ा सा सुनाएंगे गीत की?
जी जी हाँ, इसके लिए हम लोग इस तरह से गाते हैं शुरुआत में, मोरे रामे गरामे गरामे रामे भाई, मोरे रामे गरामे रामे गा मोर भाई, मोरे रामे गरामे रामे गा मोर भाई। और इसको मेरे बड़ा भाई है ना वो गाते हैं, उसके संग में मैं रागी की उसको भूमिका निभाता हूँ।
तो रागी किस तरह से कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा।
हाँ, मुख्य गायक के साथ साथ रागी का भी भूमिका है पंडवानी में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको जो गायक है उसको भी ज्यादा इस पर रहना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे ही अपना गायक है अपना प्रस्तुत किया, उसके बाद जो बाकी का जो शब्द है बाकी का जो लाइन है उसको मैं अपने आवाज के माध्यम से उसको और आगे बढ़ाने के लिए लगातार जब तक के वो अपना प्रसंग को बताते रहते हैं और मैं संगीत के माध्यम से और जो भाव है उनको मैं आगे आगे उनको मैं ज्यादा ही बढ़ाते रहता हूँ। उसको जैसे ही मतलब वो अपना भूमिका बताते रहते हैं और मैं इधर उनको बढ़ा करके मैं लोगों के बीच में उसको और ही ज्यादा मधुरतम और गहराई के रूप में ले जाता हूँ।
बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो मुख्य गायक है उसको थोड़ा सा विश्राम भी आवश्यक होता है और उस बीच जितने श्रोता हैं उनको मंत्र मुग्ध करके अपने शब्दों से अपने गायन से आप रखते हैं जो काम रागी का होता है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छी कथा के बारे में भी जानकारी दी। गन्नूलाल जी, आप देवरी भाटापारा से हैं और अब हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं आपके क्षेत्र की जहां अगर हम और हमारे साथी आए तो वो घूमना चाहेंगे या जाना चाहेंगे या आप ले जाना चाहेंगे हम सबको।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी जगह है और जगह से संबंधित जो स्थान है उसका वहाँ के जो संस्कृति है पर्यटन है और वहाँ का वातावरण से बहुत संबंध रखता है। और इसी क्रम में हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी में सिंगारपुर मावली में माता मावली का मंदिर है जहां चैत्र नवरात्रि तथा कुवार नवरात्रि में मनोकामना ज्योति कलश हजारों की संख्या में भक्त लोग जलवाते हैं। और इस पर ही हमारे गांव से ही 4 किलोमीटर दूर में भाटापारा शहर है और यहां में भादो के महीने में रामनाथ सप्ताह जो कि बहुत प्रसिद्ध है यहां आयोजन होता है, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन में रामनाम की धुन के साथ में कीर्तन मंडली जो है अपना जो मंदिर है इसको लेकर के लोग आते हैं, साइकिल से आते हैं तो ट्रैक्टर के भीड़ के लोग ले आते हैं और भव्य जुलूस निकलता है उस दिन। और इस प्रकार से हमारे गांव के पास ही में निकट में ही करेंगा गांव है जो कि गाऊ कल्याण की जो कि बहुत ही दानवीर थे उस समय
जी,
और राजू की रजवाड़ा से करेंगा राज के नाम से चलता है ये क्षेत्र, तो उनके नाम से भाटापारा में गाऊ कल्याण की कृषि महाविद्यालय है और उसी के ही नाम से रायपुर में घड़ी चौक के पास डी के अस्पताल है जो कि अभी वर्तमान में डी के एस मल्टी हॉस्पिटल के नाम से चल रहा है और जो कि दाऊ कल्याण सिंह के दिए गए भूमि पर ही है। और इस तरह से ग्राम करेंगा जो नजदीक के गांव में है यहाँ महामाया माता का जो बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ मंदिर में दोनों पर्व में ज्योति कलश की बहुत से हजारों संख्या में दीप प्रज्वलित होता है और दूर दूर से भक्त लोग यहाँ आकर के अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं।
चलिए, देखिए कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां आपने दी और एक आपने कहा था कि दाऊ कल्याण सिंह जी के बारे में, तो जिस अस्पताल का आपने नाम लिया है मेरा जन्म भी उसी अस्पताल में हुआ है, डीके हॉस्पिटल में। जी जी, तो और दूसरी बात ये है कि सिर्फ वो ही नहीं, रायपुर का जो कृषि विश्वविद्यालय है वो भी उन्हीं की दी हुई जमीन पर बना है और जो एम्स आज आप देख रहे हैं रायपुर में वो भी दाऊ कल्याण सिंह जी की दी हुई जमीन पर बना हुआ है। और भाटापारा में जब एक बार अकाल पड़ा था तो उन्होंने कल्याण सागर जलाशय भी बनवाया।
हाँ, मवेशी अस्पताल
जी 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 हाँ मवेशी अस्पताल भी उन्होंने उस समय बनवाया और गरीबों के लिए लाइब्रेरी भी बनवाई। बहुत बड़े दानवीर हैं दाऊ कल्याण सिंह जी और उनकी याद में 4 अप्रैल को हम लोग दानशीलता दिवस मनाते हैं।
सही बात है, सही है
जी। बहुत प्रेम करने वाली अपनी जनता की सेवा करने वाले व्यक्ति थे तो उनको हम सब याद करते हैं और सादर नमन करते हैं। आपने उनकी याद दिलाई, आप उनके ग्राम के पास में रहते हैं, बहुत उनको नमन है। गन्नूलाल जी,
जी हाँ।
आपने बताया कि आप नौधा रामायण में भी गायन करते हैं तो ये
हाँ।
9 दिन जो दिन रात चलता है तो आप 9 दिन लगातार गाते रहते हैं आप?
असली में क्या है, हमारे गांव में नौधा रामायण प्रति वर्ष होता है और इस वर्ष भी अभी 5 फरवरी को बसंत पंचमी से लेकर के 14 फरवरी को पूर्णिमा तक है और इसमें हम लोग पूरे गाँव में करीब 15-16 मंडली है महिला पुरुष मिला करके, तीन लोग को आधा घंटे का इन लोग पर टोली देते हैं और अपना जो क्रम बना देते हैं लिस्ट सूची के अनुसार से अपने जो बारी के इंतजार करते हैं सब लोग आते रहते हैं। और इस तरह से अब जब सुबह से लेकर के दोपहर तक 12 बजे तक के अपना स्थानीय जो टोली है गांव का वो चलता है और उसके बाद में अब यहाँ नौधा रामायण हो रहे हैं तो चूँकि आसपास के लोगों को मंडली वालों को भी निमंत्रण देते हैं तो उन लोग आते हैं और आ करके उन लोगों जो संख्या ज़्यादा हो जाता है तो उन लोग को भी समय निर्धारित कर देते हैं और अपना बारी बारी से उन लोग नौधा रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भजन उसको प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत करके वो रात्रि 12 बजे तक चलता है। उन लोगों को हम प्रोत्साहन राशि भी देते हैं, जैसे अभी वर्तमान में हमारे गाँव में 355 रुपया जो बाहर की मंडली आएंगे उनको प्रत्येक मंडली को प्रोत्साहन राशि के रूप में हम देते हैं यहाँ गाँव के जो सदाबहार दानदाता उनके द्वारा। और इस तरह से ये रामायण मंडली है अनवरत 9 दिनों तक चलते हैं और बाहर की भी टोली देते हैं गांव की भी टोली देते हैं।
तो ये आपसी सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम जो बहुत बड़ा कार्यक्रम है 24 घंटे लगातार गायन बहुत बड़ी बात होती है वो संपन्न हो पाती है। और एक बात और, नवधा रामायण को लेकर अक्सर कहा जाता है कि लाउड स्पीकर बहुत लगा दिए जाते हैं तो
हाँ, हाँ,
उसको लेकर आप लोग कितने सतर्क हैं कि वो कई बार ऐसा होता है कि रात रात भर चलते हैं लोग सो नहीं पाते हैं तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है तो शिकायतें भी आती होंगी आप लोगों के पास इस तरह की?
हाँ,
तो क्या
इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ
जी
कि हमारे गांव में भी लाउड स्पीकर जो है पूरे गाँव में करीब 1 किलोमीटर के दायरे में लाउड स्पीकर का विस्तार रहता है, लेकिन क्योंकि अब 2-3 वर्ष अब हो रहा है कि अब जो COVID-19 के कारण इसको ध्यान को रखते हुए अब नौधा रामायण में जो लाउड स्पीकर जो विस्तार है उसको इस वर्ष हम लोग नहीं किए हैं, केवल जो कार्यक्रम स्थल होगा वहाँ पर बांस लगेंगे और मतलब जो चुंगा है वो लगेगा और वहीं पर ही ध्वनि विस्तार रहेगा, पूरा गांव में विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि लड़के और बच्चे लोग हैं वो सभी लोगों का पढ़ाई भी इससे प्रभावित होता है तो उनको ध्यान रखते जो रात्रि के 11 बजे तक के लगभग मतलब जो साउंड रहता है बाहर का उसके बाद स्थानीय स्तर पे जो जहाँ पर मंच है उस वही जगह पर और बाढ़ से बजा रहता है और जो गायन और अपना जो रामायण का पर्यायन करते हैं उन लोग वहीं पर करते हैं, ऐसा हम लोग व्यवस्था किए हैं।
चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि ये अभी कोविड काल है तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ व्यवस्था कर रखी है?
हाँ, कोविड काल है इसके लिए हम लोग क्या है जो शासन की जो नियम है उसके अंतर्गत हम लोग शासन के नियम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो सबसे पहले तो जो सैनिटाइजर है उसको मंच के पास है भोजनालय में है और जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर सैनिटाइजर करके पूरे जगह को सैनिटाइजर भी रखे हैं और उसके बाद में लोगों को लगाने के लिए मास्क है और जैसे उड़ते हैं कोई इधर उधर जाते हैं उसके लिए हाथ धोने के लिए साबुन की जो व्यवस्था है फेस वॉश के जो अपने हाथ को धोते हैं इस तरह से ये भी व्यवस्था हम लोग वहाँ पर रखे हुए हैं और इस तरह से ये 2 साल से ही मतलब ऐसा चल रहा है।
चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी जागरूक हैं, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, ऐसा सोचकर ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं तो ईश्वर जल्दी ही हम सबको इस महामारी से मुक्ति देगा ऐसी उम्मीद है। और यहाँ पर एक और गीत आपसे सुनना चाहेंगे।
मेरे पसंद का एक बहुत ही और सुंदर गीत है फिल्म नागमणि का और वो है हमारे देश के जो राष्ट्रीय कवि हैं कवि प्रदीप जी कुंटेश्वर में है और गीत के बोल हैं पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को तेरा दर्द न जाने को
पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे के, भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोए, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोए, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे।
कन्नूलाल जी, अब हम जानना चाहेंगे कि रेडियो से आप कब से जुड़े हुए हैं?
मैं जब बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय प्राइमरी पढ़ के आते थे, तो मेरा बड़ा भाई वीडियो बनाने काम करता था, तो वो अपने पास में ही यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रखा रहता था, और उसमें उस समय जो हम स्कूल से आते थे तो देखते थे कि बड़ा भाई बीड़ी बना रहा है, और वहीं पर ट्रांजिस्टर में छत्तीसगढ़ी गीत आता था, तो उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर गीत देते थे, हम लोग बैठ कर वहीं पर सुनते थे, तो उस समय मेरा लगाव बता रहा हूँ, मेरे सन 1982 के आसपास का बात है, तो मैं देखा कि वहाँ पर जो गीत है तो बहुत ही सुंदर सुंदर गीत बज रहा है, और गीत को सुन करके हम लोग पढ़ के आते थे तो सब एकत्रित हो जाते थे एक ही जगह में, और जब सुनते थे गीत को तो वही सब लोग आपस में फिर वो गीत को और सुनेंगे, ऐसा करके इस तरह से ललक मतलब लगे रहता था, और प्रतिदिन मतलब उस गीत को सुनने के लिए ऐसे लगते गया, और उसके बाद में और मेरा मन फिर देखा उस प्रोग्राम में जो गीत के पहले नाम भी बताते, नाम भी सुना, तो हमारे पास में दतरंगी वालों का है तो उन लोगों का भी नाम सुना, उसके बाद में हमारे गाँव से भी हमारे मित्र है गणेश राम मिस्त्री, वो भी मतलब पहले जुड़े हुए थे तो अभी भी जुड़ा हुआ है, तो ये लोग भेजते थे तो मैं सुना कि इन लोग का नाम आता है, हमारे गांव से नाम सुने, इस तरह से मन में भी मेरा भी ललक हो गया। उसके बाद मैं और इधर लगातार फिर उन लोग से संपर्क किया, तो संपर्क के बताया उन लोग की पोस्टकार्ड है, उस पोस्टकार्ड में जो गीत है उसको लिखना पड़ता है, उसके बाद गीत के कौन गाया है इस तरह से और पता भी भेजने से ये शामिल हो गया, ऐसा करके मेरे को बताया, तो मैं भी उसी समय से वो प्रयास किया, तो उसी समय आकाशवाणी भोपाल से एक दर्पण कार्यक्रम चलता था, तो दर्पण कार्यक्रम में मैं शुरुआत किया उसमें भी, तो दर्पण में भेजा और तुरंत एक ही हफ्ते में तुरंत वो शामिल हो गया, फिर उसके बाद रायपुर में भेजा, तो इसमें भी मतलब करीब 15 दिन बाद शामिल हुआ
जी।
तो इसमें भी शामिल होते गया, फिर मेरा जो लड़क है वो रुचि बढ़ते गया। इस तरह से मैं लगातार भी अभी तक के करीब 40 वर्ष से मैं लगातार अभी रेडियो सुन रहा हूँ। और उसके बाद में मेरे घर में अब सब लोग हैं, तो ये लोग मेरे को उसके बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। और उसके बाद में आसपास के गांव वाले लोग हैं और बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं, उसके बाद फिर इस तरह से पूछे कि कैसा क्या है, जब कुछ भी मैं हमारे गांव के कुछ लोगों को फिर और जोड़ा मैं, और ये सब लोग आपस में मिलकर जैसे के आर साहू जी है और अपना सोनी वर्मा है और अर्जुन भगवान भी रजक है, इन लोग भी फिर मेरे से जुड़ करके इन लोग भी लगातार फिर हम रेडियो में जुड़ के गए। और अभी तक के हम लोग आकाशवाणी रायपुर हैं, भोपाल है, अंबिकापुर है और वीर भारती है और इंद्रप्रस्थ चैनल दिल्ली का है, ये सब में रेगुलर अभी तक के हम लोग। और यहाँ तक के प्राइवेट जो रेडियो कम्युनिटी है इसमें भी हम लोग भेजते हैं, जयपुर है आपका, अर्पा है और बिलासपुर केंद्र है, इसमें भी हम लोग लगातार अब फरमाइश भेजते हैं और सुनते भी हैं हम लोग इसमें रेगुलर।
अर्पा के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
अर्पा का मेरे को बहुत सुंदर अभी कार्यक्रम आप लोग चालू की स्थिति के अंदर बहुत अच्छा लगता है, और उसको बता रहा हूँ इसके कारण, उसमें जो गीत है वो गीत ऐसा गीत है जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे जमीन से जुड़ा हुआ गीत है। और एक ही गीत का अगर उसको विस्तार करेंगे ना, मैं देखता हूँ कई बार कार्यक्रम तो कम ही समय में समझ जाता है, लेकिन उस गीत को अगर ये करेंगे तो एक ही गीत में 1 घंटा का कार्यक्रम हो जाएगा, ऐसा नहीं वो कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और मैं स्मृति गंधा है और अनिश के संगीतान मन के पसंद है और तीर्थक गीत है पसंद आपकी, ये सबको मतलब लगभग सब कार्यक्रम ही मैं रेगुलर सुनता हूँ।
शुक्रिया। और कोई सुझाव देना चाहेंगे अर्पा रेडियो के लिए?
अर्पा रेडियो के लिए सुझाव तो यही है कि अभी जो चिट्ठी आई है कार्यक्रम चालू कर दिए, उसके बाद में जो रेडियो से जो जुड़ी है जो लोग श्रोता लोग जो भी आकांक्षा अपने रखते हैं उसको आप लोग लगातार कर रहे हैं, तो उसमें अभी तो ऐसे ठीक ही है, तो इसे किसी प्रकार का भी होगा तो और भविष्य में देखिए कभी सब कार्यक्रम ही अच्छा है।
तो गन्नू जी, आज आपने अपने बहुत ही व्यस्त समय में हमारे लिए इतना वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हम लोगों को बताई, और जिस तरह से आप और आपका पूरा गांव, आपकी मंडली जागरूक है कोविड को लेकर, वो जानकर भी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और प्रेरणा मिलेगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने की।
धन्यवाद।
शुक्रिया।
सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे देवरी भाटापारा के श्रोता साथी गन्नूलाल रजक, और इनसे बातचीत कर रही थी मीनू सिंह।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।